शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली बहुत ही विशेष है। बाबा ने आज बहुत कुछ अनुभव कराया है। बाबा कौन सी सभा को देख रहे हैं? पर्सनालिटी और रॉयल्टी का आधार है प्यूरिटी। तो बाबा आज सभा में किसको देख रहे हैं? उन बच्चों को देख रहे हैं जिनमें प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। केवल अभी की नहीं, लेकिन सारे कल्प की, आदि से अंत तक की प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी। तो बाबा ने हमारा अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, ये सब चक्र घुमाया है और अनुभव कराया है। तो हम भी उसी अनुभूति में खो जाएं, बाबा के माँ वाक्य सुनते सुनते। फिर बाबा ने उसका चार्ट भी दिया है, कैसे इसको धारण करो, कैसे इसको लाओ। तो वो चार्ट भी बाबा ने विशेष रूप से बताया है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य, बहुत ही गहरे हैं। आज 7/12/2025 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 2/2/2008 की, 2 February 2008। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। क्या करो? संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। लाओ स्मृति में अपने ज्ञान सूर्य स्वरूप को, तब ये संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव कर सकेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी बेसिस है, आधार है रॉयल्टी और पर्सनालिटी का। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। प्यूरिटी कैसे दिखाई देती है बाबा को? प्यूरिटी की लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी महसूस करे स्वयं में, मैं मेरे सिर के पीछे प्यूरिटी का ताज है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हो, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव कहां तक पहुंच रहा है, आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है, याद आता है ना। आदि काल तो क्या, अनादि काल से प्रसिद्ध है, तो याद आता है अपना अनादि और आदि काल, याद करो। अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं परमधाम में अपने आप को देखो, हमारी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी है। परमधाम में तो बल सब आत्माएं जैसी है, लेकिन जो ब्राह्मण बनते हैं उनकी रॉयल्टी और पर्सनालिटी थोड़ी भिन्न तो होगी ना परमधाम में भी। तो बाबा कहते हैं, याद करो अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं परमधाम में आत्मा स्वरूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और आप और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। क्या उदाहरण बाबा ने दिया होगा, वहां तो आत्माएं सब चमकती है, लेकिन हम बच्चों की चमक विशेष है। तो उदाहरण बाबा देते हैं, जैसे आकाश में सितारे तो अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं, होते ना। ध्रुव तारा तो बिल्कुल ऐसा स्पेशल चमकता है, ध्रुव तारा तो कई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को, इमर्ज करो परम धाम में, मैं आत्मा हूं और सब आत्माओं के साथ हूं, लेकिन मुझ आत्मा की चमक कितनी जबरदस्त है। देख रहे हो सभी अपने को, फिर आदि काल में, अब ये तो अनादि काल हुआ परम धाम में, अनादि काल में, अभी आदि काल माना देवता रूप में, फिर आदि काल में आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। देवता रूप में भी हमारी प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में, लव स्मृति में वो आदि काल देवताओं का काल, पहुंच जाओ, जो न पहुंचे हो वो पहुंच जाओ। चेक करो, अब हर एक चेक करे आदि काल में पहुंच कर देवता के स्वरूप में, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, जो ज्यादा चमकने वाले सितारे होंगे वो तो बाबा के साथ साथ ही होंगे ना परम धाम के उस आत्माओं के वृक्ष में भी। चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो, करो अपनी विशेषता अनुभव, परम धाम में मैं कितनी चमकती हुई आत्मा हूं। पहुंच गई सब अनादि काल में, फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है। अनादि काल से शुरू हुई तो सारे कल्प में भी भिन्न भिन्न रूप में हमारी पवित्रता की रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, क्योंकि क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है हमारे जैसा संपूर्ण पवित्र। पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। क्या हम विशेष आत्माओं को प्राप्त है? पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ, अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। देवता रूप में भी हमारी पवित्रता का की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहले परम धाम में बाबा ने पहुंचाया, अभी सतयुग में बाबा पहुंचा रहे हैं। पहुंच गए, आ गए सतयुग में, कितना प्यारा स्वरूप देवता स्वरूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। कई देवताओं की मूर्तियां इतनी सुंदर बनाते हैं, बात मत पूछो, किसी की ऐसी सुंदरता नहीं होगी यहाँ दुनिया में जैसे मूर्तियों की सुंदरता बनाते हैं। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना बाबा, हमारी देवता रूप की चमक अनुभव करा रहे हैं। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब किस आधार पर है? ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ, आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना, अनादि काल में भी जाना सहज है, आदि काल में भी आना सहज है, फिर मध्य काल में भी आना सहज है जब हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं तो मध्य काल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं, है ना। देखे ना पुजारी कैसे रॉयल्टी से पूजा करते हैं। और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं, अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, है ना, अभिनेताओं के। लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया, अच्छा फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। कौन सा भाग्य? परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता। सारा चक्र लगाया, अभी अपने को चेक करो, नशा भी चढ़ाया, वो साक्षात्कार भी कराया, अभी बाबा कहते अपने को चेक करो, अपने को देखो, देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है, जिसको है वो हाथ उठाओ, उठाओ भाई हाथ, अपने को चेक करने का आईना सबको है, आईना है। अच्छा क्लियर है, कई बार आईना तो होता है लेकिन वो जरा डल होता है, या तो किचड़ा होता है, या तो वो वैसा ही आईना होता है, उसकी क्वालिटी ऐसी होती है। आईना है, अच्छा क्लियर है आईना, तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्माचार्य, ब्रह्माचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंटेज में है? परसेंटेज निकालने आती है ना, टीचर्स को आती है अपने पवित्रता की परसेंटेज निकालना आती है, पांडवों को आती है। अच्छा होशियार हो, सबने हाथ उठाया कि हाँ आती है परसेंटेज निकालनी, अच्छा होशियार हो। अच्छा माताओं को आती है, कितने हद तक हमारे अंदर पवित्रता है वो प्रतिशत निकालना आता है, परसेंटेज निकालनी आती है। माताओं को आती है, आती है माताओं को, उन्होंने भी हाथ उठाए। अच्छा अब पवित्रता की परख क्या है? चलो परसेंटेज तो निकालनी आती है, परख क्या है कैसे पता चले? पवित्रता की परख है वृत्ति, दृष्टि और कृति, दोनों में चेक करो, क्योंकि इन तीनों में पवित्रता चाहिए ना, वृत्ति दृष्टि और कृति, तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी, अब कैसे पता चलेगा संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति है, वो बुद्धि में आ गई ना। सोचो संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी होना। किसको कहेंगे पवित्रता की वृत्ति? हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी हो ना। और दृष्टि क्या होगी? पवित्रता की दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो। और कृति, कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना, ये है पवित्रता। कर्म में सुख लेना, सुख देना, तो ये चेक करो मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है। कृति माना कर्म, तो दृष्टि वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना, तो चेक करो कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा बाबा कहते दुख ले लेते हो? दुख देने वाले भी तो होते हैं ना, बहुत होते हैं दुख देने वाले हैं। मानो वो दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? क्या उसने दुख दिया कुछ ऐसा शब्द बोलकर जो आपको बहुत बुरा लगा, तो क्या आपको भी उसको फॉलो करना है? क्या फॉलो करना है या नहीं? तो नहीं, तो फिर फॉलो किसको करना है? उस आत्मा को फॉलो नहीं करना है जिसने कुछ ऐसा कहा जो थोड़ा दुख हुआ, तो फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को? किसको फॉलो करना है? बाबा को। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही है, वो तो कभी, शिव बाबा तो कभी दुख नहीं देते, पर निराकार बाप की तो बात है ही है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया? कितना लोगों ने क्या क्या बोला बाबा को, कितने कलंक भी लगाए, हाँ लेकिन बाबा ने कभी दुख लिया? सुख दिया और सुख लिया, फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है दुख? नाम ही है दुख। अब ये शब्द दुख, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है। अगर कोई इंसल्ट करता है आपकी, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो? तब उसने इंसल्ट की आपको, अच्छा समझते हो कि उसने इंसल्ट की आपकी? खराब समझते हो ना, तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो? अब कोई खराब फल दे दे आपको, सड़ा हुआ फल दे, आप लेंगे? आप कहेंगे अरे ये तो सड़ा हुआ फल है, तो खराब चीज तो लेंगे नहीं ना, तो आप ले लेते हो? ले लेते हो थोड़े समय के लिए, चलो दे रहा है प्यार से दे रहा है, चलो ले तो लूं थोड़े समय के लिए, चलो ज्यादा समय नहीं थोड़ा समय। आप कहेंगे चलो दे रहा है दे लो, फिर भले फेंक दूंगा, लेकिन थोड़े समय के लिए खराब चीज लेनी होती है क्या? तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों? फीलिंग आती है ना, तुरंत चेहरा बदल जाता है एकदम, पता चल जाता है इसको बहुत फीलिंग आई, हाँ मैंने इसको कुछ समझाया भी, मैंने इसको कुछ, हाँ ये नहीं करने लिए कहा कुछ, इसको कहा भी इसको फीलिंग आ गई कि क्यों मुझे ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थात मन में फीलिंग के रूप, तो बाबा कहते हैं तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? चलो उसने मुझे कुछ कहा करने लिए, मुझे उसको किस रूप में देखना है? कि मुझे बदलना है, बस इस रूप में देखना है ना, कि फीलिंग आनी चाहिए। या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हो? क्या समझते हो, दुख लेना राइट है? राइट मधुबन वाले राइट है? बाबा मधुबन वाले तो सामने सामने बैठते हैं, तो बाबा पूछते हैं उनसे राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए ना दुख, दुख ले लेना चाहिए ना? बाबा पूछते हैं नहीं लेना चाहिए? लेकिन ले तो लेते हो, ले तो लेते हो, गलती से ले लेते हो, ले लेते हो, पता है नहीं लेना चाहिए पर फिर भी ले लेते हो, तो क्या गलती से ले लेते हो? यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? चलो उसने तो बोल दिया, बोल करके भूल भी गया, लेकिन परेशान कौन होता है? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना, वही परेशान होगा ना किचड़ा लेकर के। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है, बहने क्या टाइटल है आपका? सहनशीलता की देवी। हो सभी सहनशीलता की देवी? हाथ उठाओ, माताएं तो है ही। कितना सुनना पड़ता है, पति का सुनना पड़ता है, जेठ का सुनना पड़ता है, सास का सुनना पड़ता है, तो सब सहनशीलता की देवियां हो माताएं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, ठंडी लगती है, हाथ नहीं उठता। सब हो कि नहीं हो? अरे नहीं उठाती हो, नहीं हो क्या? माताएं हो? देखो आप तो, बाबा कहते हैं आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो ना, हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हो, कभी कभी सहनशीलता के देव नहीं हो जा, नहीं होते हो। तो अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति में लाओ, सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति में लाओ। स्मृति में आ गया ना, तो बाप दादा ने देखा। अभी देखो बाबा कैसे फिर से हमें उसको समझाते हैं। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द, मेरा ये शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है। अभी हम क्या कहते हैं? मेरे बाबा, मेरा बाबा। कुछ किसी ने क्या किया, हम कहेंगे नहीं मेरा बाबा ने किया। तो मेरा बाबा कहते हो, सहज अभी मुख से निकलता है। मेरा मना अभिमान से नहीं कहते हो, मेरा बाबा कहते हो। तो ये सहज याद में परिवर्तन किया है। तो मेरा को, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? ये मेरा 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 कुछ नहीं है, बस मेरा तो एक बाबा है बस। तो ये विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है। हाँ बरोबर, मेरा बाबा है और कोई नहीं, और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। अब बाबा मेरा है तो बाबा का सब कुछ मेरा है ना, तो प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं। क्या विशेष है? सारे कोई समस्या का कारण दो विशेष शब्द है, वो दो शब्द कौन से हैं? मैं और मेरा। यही बन जाता है ना ये सारा समस्या का कारण, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, तो अलग कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो दो शब्द है, मैं और मेरा। तो बाबा कहते हैं सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते। ऐसे ये जो दो, ये जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो। अब मेरा शब्द तो परिवर्तन हो गया मेरा बाबा का, अब जब मैं शब्द बोलो तब अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन, मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास तो हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ऐसे कोई न कोई स्वमान मैं से जोड़ दो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए। क्यों मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए? क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है, समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं कितनी आ रही है, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। क्या करो? अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। तो समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। शांति की शक्ति का प्रयोग करो भिन्न भिन्न रूप से। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है ना, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। स्व प्रति शांति का प्रयोग, उतना ही फिर औरों के प्रति शांति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति, कौन है हमारी प्रकृति? सूर्य की शक्ति हमारी है ना वो रचना। तो आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। सूर्य की शक्ति क्या 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 कार्य करती है? पानी बरसाती भी है ना, सूर्य है तभी तो पानी भी बरसता है, पानी खींचता है सागर से, सूर्य बादल बनते हैं, फिर वो बादल बरसते हैं। तो बाबा कहते हैं पानी बरसाता भी है सूर्य, पानी सुखाता भी है ना, दूर धूप में पानी रखा है तो धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा। तो पानी सुखाता भी है, दिन से रात भी करता है, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते हो? आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते हो? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। मैं ज्ञान सूर्य हूं, हाँ बाबा कहते इस स्वरूप को इमर्ज करो। किरणें फैलाओ, सूरज किरणें फैलाता है ना, तो मैं ज्ञान सूर्य अपने गुणों की किरणें फैलाऊं, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला जाओ, उनको संकल्प मिला घर बैठे जाओ वहां, तो क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया कि जैसे ब्रह्मा बाबा नहीं है, श्री कृष्ण है, तो कहा जाओ इनके पास। तो बाबा कहते हैं संकल्प मिला जाओ, ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी, इसका साधन है, कब होगी? इसका साधन है मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। बहुत बड़ा काम है ये, एकाग्रता की शक्ति को मन में बढ़ाना। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना या मुरली, जो बाबा की एकदम स्ट्रांग पावरफुल मुरली थी, अभी उसके बाद थोड़ा हल्का बाबा ने किया है। बाप दादा ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं, है ना। फरवरी की ये मुरली है तो शिवरात्रि भी होगी उस समय, तो बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं, चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। अभी तो विशेष सेवा 12 ज्योतिर्लिंगम बनाते हैं ना कई जगह पर, तो टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो, सावन महिमा की संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया में बढ़ा रहा है सेवा। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो, उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाबा को लेकिन कहना पड़ा, लेकिन क्या क्या कमी है, लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है, ये भी आवाज अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाई क्या सुनाई लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही है, ये आवाज तो बहुत फैल रहा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, ऐसे ही तो नहीं कर रही ना अपने आप, उनको कराने वाला कौन है, अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए, भगवान आया है, बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए, इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा, अब किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा, कि वारिस किसको कहेंगे और या माइक किसको कहेंगे। पहले बाबा की बहुत मुरलियां चलती थी, वारिस निकालो, माइक निकालो, तो किसी ने बाबा से पूछा वारिस और माइक इसको किसको कहेंगे। तो बाबा कहते हैं माइक तो निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा, अभी माइक किसको बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है, किसको कहेंगे माइक, जिसके आवाज की महानता हो। अब राष्ट्रपति कुछ भी बोलेगी तो तुरंत अखबारों में सब आ जाएगा, प्रधानमंत्री ब्रह्मा कुमारियों के लिए कुछ बोलेंगे तुरंत अखबारों में आ जाएगा ना, टीवी में भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं, ये आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अखबार वाले डाले, अब हम लोग बोलेंगे या जो कुछ भी हम कहेंगे, और भी बैठे होते हैं स्टेज पर, उनका इतना नहीं वर्णन होगा अखबार में, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या बोला, प्रेसिडेंट ने क्या बोला, फलाने मिनिस्टर ने क्या बोला, उसका आवाज निकलता है। तो बाबा कहते हैं जिसकी आवाज की महानता हो, अगर साधारण बाबा शब्द भी बोल देते हैं, वो ओम शांति भी बोल देते हैं, तो भी वो आ जाता है ना। बड़े व्यक्ति ने कहा साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है, ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रही है तो लाया इतने तक, तो बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो। क्या बोला उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों के लिए, उसकी आवाज की वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं है माना वो व्यक्ति ऐसा प्रसिद्ध हो जो तुरंत अखबार वाले टीवी वाले वो नोट करे और वो डाले। तो बाबा कहते प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो। कई तो ऐसे है जो अभी उनका कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन समाज में उनका बहुत मान है, बहुत उनको सम्मान देते हैं, भले कोई ऐसा पोजीशन नहीं है, तो वो भी अगर बोलते हैं तो भी उसका महत्व होता है। तो बाबा कहते हैं प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है। ये व्यक्ति ने कहा, इस व्यक्ति का तो समाज में कितना बड़ा नाम है, इतना महान है ये, इसने कहा ब्रह्मा कुमारियों के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसकी आवाज में वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू है। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है ना, पावरफुल माइक होता है ना, तो आवाज बाहर का आता ही नहीं है, केवल उसी माइक का उसमें जो बोलते हैं वो ही आवाज आता है। तो माइक जो स्थूल माइक होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेगी जिसके आवाज की वैल्यू हो। मर्तबे वाले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उसके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसे माइक चाहिए, अब बाबा ने माइक कैसे चाहिए वो बताया। अब वारिस की बाबा परिभाषा देते हैं, वारिस को तो जानते ही हो, वारिस किसको कहेंगे, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य के साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, वो है वारिस। किसको कहेंगे वारिस, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थि हो, उसको बाबा वारिस कहते हैं। अच्छा अभी बाबा ने ड्रिल कराई है, अभी एक सेकंड में, एक सेकंड हुआ एक सेकंड में सारी सभा जो भी है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। जहां भी हो बाबा कहते हैं अभी मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाबा संकल्प दे रहे हैं, बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। स्थित करो अपने आप को परम धाम में, मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ परम धाम में बाप के साथ। अच्छा अभी साकार में आ जाओ, फिर बाबा साकार में ले आए। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ, बहुत बड़ा काम है ये, कंट्रोलिंग पावर को अब ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चाहे वही हो, हम जो चाहे वही हो, तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। एकदम कंट्रोलिंग पावर एक सेकंड में, बाबा कहते अंत में यही अंत को सुहानी करेगा। आपका अंत बहुत जैसे सूली से कांटा हो जाएगा, सहज पार हो जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त? साथी और साक्षीपन की स्थिति से। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, हाँ साथी बनाया बाबा को, जो सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं। तो अगर साथी साक्षी बन के पाठ बजा रहा है, तो हम जो बाबा के साथी हैं तो हम भी साक्षी बन पाठ बजाएंगे, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बनी जाते हैं। कौन है मेरा साथी? हाँ, ये सोचते ही बाबा कहते सफलता मूर्त बनी जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो। कौन सी खुशी और नशा? कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो साथी भी साथ रहे और साक्षी स्थिति भी अनुभव हो। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी क्या है? व्यर्थ संकल्प है उसकी निशानी क्या है? मन उदास और खुशी गायब। ये अपनी चेकिंग है। अगर मन उदास है और खुशी गायब है तो क्या सोच, तो क्या है? जरूर व्यर्थ संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ के अंतर्गत बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। कब बन सकेंगे कर्मातीत? बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। न्यारेपन को नहीं भूलो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी भी सदा याद रहे। चलो बाबा को याद करेंगे।